الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم آخرت کے حوالے سے یہ گفتگو کی، اور تھوڑا سا اب ایک جو مجھے خطرہ سا محسوس ہونے لگا ہے وہ یہ کہ گفتگو جتنا زیادہ ہیلتھی چلی جائے گی، اس میں ضروری ہے کہ آپ حضرات جو اس کو سن رہے ہیں وہ پیچھے کے تمام اسٹیپ کو قابو نہیں کرتے ہوتے، یہ بہت ضروری، ورنہ اس قسم کی اگر صورتحال بنے گی کہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور پیچھے کی باتیں کور اپ نہیں ہوں گی اور اس کو سمجھا نہیں جائے گا، تو ان دا اینڈ ہم کسی نتیجے کو نہیں پہنچیں گے. اس لیے انہیں کی جیسا میں نے پہلے بھی گزارش کی، بہت ساری چیزیں بیچ بیچ میں ڈسکس ہوتی ہیں، باقی تو میں اس چیز سے مطلب خاص طور سے عرفان بھائی سے نمبر ون اور وسیم بھائی سے نمبر ٹو معذرت کے ساتھ کہ باقاعدہ کلاس روم والی شکل دینے کا میں حق نہیں ہوں، میں اس سیشن کو انفارمل ہی رکھنا چاہتا ہوں کہ جس میں ہر ایک کھل کے بات کر سکے، اور میرے خیال میں ہمارے ساتھ بیٹھنے کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ یہی ہے کہ یہاں ہر شخص کو اپنے دل کی اور دماغ کی بات کرنے کی پوری اجازت ہے، یعنی کہ ہماری طرف سے بولنے والے کی طرف سے سامعین پر ایسی کوئی پابندی نہیں کہ وہ کسی وقت سوال نہ کر سکیں، اور جو مطلب ایک کسی ٹاپک کے اندر رہ کر جو چاہے سوال کریں، یہ پابندی میں نہیں لگانا چاہتا کہ ہم زیادہ سیڈنٹک یا اس رستے پر آ جائیں، اس کے لیے تھوڑی سی معذرت، لیکن ہم اس کو کلاس روم ٹائپ نہیں دینا چاہ رہے، لیکن ایک آرگنائزیشن ضروری رکھنا چاہتے ہیں، اور آرگنائزیشن میں جو سب سے اہم اسپیکٹ ہے وہ یہ کہ جو گفتگو بھی کتنی دفعہ کی جائے، کیونکہ ہر دفعہ کی گفتگو ایک مرحلہ فکر ہوتا جس سے ہم گزرتے ہیں، تو اس مرحلہ فکر کو اچھے طریقے سے گریپ کر کے پھر امید رکھایا گیا. اس میں میں اس بات کو بہت زیادہ اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ حضرات کم از کم ایک دو تین مرتبہ کسی گفتگو کو دوبارہ سنیں، 15 دنوں میں اس پر اپنے کوئی نوٹس بنائیں، کوئی سوالات ہوں، کوئی کمنٹس ہوں. اب جیسے مثال کے طور پر انٹرسٹنگ میں چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، اور یہی ہمارے لیے بڑا ایک مشکل کا بھی باعث بنتی ہے چیزیں، کہ ابھی حسین بھائی آج بنی آئے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے سفر میں زیارتوں کے مختلف مولانا حضرات سے ان کی ملاقات بھی کرنے لگے، کسی نے بھی اس آئیڈیا کو انڈورس نہیں کیا کہ قیامت اسی زمین پہ ہے. حالانکہ قرآن واضح ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دشواری پیدا کرے، لیکن پرابلم ہم سب کے ساتھ یہی ہے کہ وی آر مسنگ دا آبویس. ہمارے دینی حوالے سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے سامنے بالکل پھیلا کے رکھ دیا گیا ہے ہم اس کو فکر نہیں کر پاتے جو ہماری نظروں کے سامنے. تو بہرحال یعنی کہ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ بھی میں اینٹیسپیٹ کرتا ہوں کہ اس قسم کی بھی مشکلات آئیں گی کہ بعض وقت آپ کہیں گے یہ بات پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، اسی لیے آج میں اپنے ساتھ کتاب بھی لے کر آیا ہوں، آیت اللہ جوادی عامری کی تفسیر موجود، اور پھر یعنی کہ یہ ایک تبدیلی میں ضرور لاؤں گا کہ میں حوالوں کے ساتھ بات کر لوں تاکہ یہ خدشہ، کیونکہ مجھے یہ ڈر بھی لگنے لگا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ممبروں سے باتیں ہوتی ہیں، اور ویری سوری ٹو سے کہ آؤٹ آف دا مارک بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں، مطلب وہ ایکوریٹ نہیں ہے، اس کی قرآن کی بنیاد پہ یا عقل کی بنیاد پر انالیسس نہیں ہوتی، انہیں زیادہ تر باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو جذباتی بنیادوں پہ کی جاتی ہیں کہ جیسے لوگ خوش ہو جائیں، آہا واہ واہ ہو جائے، نعرے لگ جائیں، قسم کی چیز ہو جائے، تو कोई भी चीज जो मैं आपसे करना प्लान कर रहा हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो कोई मेरी वापिस कराए। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं काबिल ही नहीं हूँ कि मैं अभी अपनी जो जाती रसाई की बात कर सकूँ, लेकिन जिस चीज को हमने कनेक्ट किया अपने साथ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी अप्रिशिएट करेंगे कि शायद यही सबसे बेहतर अप्रोच है कि हमारे दौर में जो सबसे बेहतर उलमा है ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट, हम इधर उधर जाने के बजाय हम उनके पास जाएं और उनसे सीखें जो कुछ सीखना है। तो बहरहाल ये थोड़े से बैकग्राउंड के साथ क्योंकि हम इस दौरान में काफ़ी इस हवाले से भी बहस करते रहें, और ये बहस बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए ताकि हम एक रफ्ता रफ्ता बहुत एक क्लियर डायरेक्शन को पिक कर लें। तो आप हजरात से ये दरख्वास्त है कि प्लीज अगर यहाँ बैठे तो एक उसमें इस वक्त भी अगर आप पॉइंट नोट करते जाएंगे ना, या अपने साथ इस तरीके से बैठें कि सामने कुरान हो, जो आयत का रेफरेंस हो उसको देखें, इसमें अगर कोई सवाल आ रहा है वो करें, नोट कर लें चीज़ों को, पॉइंट को, फिर जाके एक दो दफ़ा सुन लें, मतलब एक वीक में एक दफ़ा, फिर अगले वीक में एक दफ़ा, तो उससे ये होगा कि हमारी प्रोग्रेस काफ़ी साफ रहेगी इंशाल्लाह। और बहुत सारी चीज़ें जो हमें बैक एंड फोर्थ करना पड़ती हैं आगे पीछे एक टॉपिक को क्लियर करने के लिए, हम उस अच्छा काम से करते हैं। तो ये मेरी गुजारिश ज़रूर है, लेकिन उस चीज़ को मैं नहीं जाना चाहता कि हम इसको बाकायदा एक क्लासरूम के तरीके से और सिलेबस के तरीके से और फॉर्मल ले दें, इसको फॉर्मल होना ही अच्छा है। और इसमें हर शख्स को इस बात की आज़ादी है कि वो अपने दिल दिमाग को खोले, क्योंकि हमारा असल मकसद ये है कि जो बर्फ जम गई है हमारी खोपड़ी पर और हमारे दिलों पर वो पिघले, हम सोचने के काबिल हैं, हम समझने के काबिल हैं, और हम खुद जो है दीन में तसैयो की खास बात यह है कि अकायद में कोई तकलीफ नहीं, यानी अगर कब्र में हमसे हिसाब किताब लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि तुम्हारा रब कौन कौन है, किसको रब माना, हम कहेंगे उसको रब माना जिसको फलां मौलाना साहब ने कहा, कि फलां साहब ने फलां आलिम ने कहा था कि अल्लाह एक है इसलिए अल्लाह एक मान लिया, ये चीज़ कबूल नहीं किया। अकीदा हर शख्स को खुद बनाना है दलील के साथ, ठीक है, आपके पास अपने ऑर्गुमेंट होना चाहिए कि आप अल्लाह के वाहिद की तस्दीक करें, ये कह के आप नहीं बता देंगे कि फलां साहब ने ये बात कही थी, हाँ मैं आपकी हेल्प जरूर कर सकता हूँ, लेकिन अपने अकीदे की पूरी इमारत हमने से हर एक को खुद बनाई, ठीक है। तो बेसिक एक बहुत बड़ा मकसद क्या है कि हमारे दिलों पर जो बदकिस्मती से कुछ पर्दे पड़ गए हैं और हमारे दिमागों पर जो बर्फ जम गई है, ये सारे के सारे ऑब्स्टिकल दूर हो जाएं और हम खुद कॉन्फिडेंस के साथ और समझदारी के साथ चीज़ों को समझने के लायक हो। अच्छा, अब मैं मौजू की तरफ पलटता हूँ, और वो ये है कि हम आखिरत के हवाले से जब बात कर रहे हैं तो अभी तक हमने जो बात की है हकीकता हम आखिरत पर नहीं पहुँचे, बल्कि हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है जिसका निचोड़ ये है, असेंज ये है कि आखिरत और दुनिया दो अलग चीज़ें हैं। किस सेंस में अलग चीज़ें नहीं, यानी इंसान की लाइफ इस तरीके के हिस्सों में बची हुई है कि ये दुनिया है, ये कुछ और चीज़ है, फिर उसके बाद आखिरत है, ये कुछ और चीज़ है, नहीं, बल्कि जो कुछ भी दुनिया की जिंदगी है आखिरत उसकी हकीकत का नाम, यानी इस दुनिया की जिंदगी में से ऊपर ऊपर के जितने भी कपड़े हैं, जो ऊपर ऊपर के जितने हमने चीज़ें लपेटी हैं उसको हटा दीजिए, अंदर से आखिरत निकलेगी। ये पहली चीज जो हमने समझाने की कोशिश की कि इसको ये नहीं समझिएगा कि यहाँ पर हम जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ करते हैं, जो कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं, ये कोई अलग चीज़ है, इसका ताल्लुक फ़कत दुनिया की ज़िंदगी से, आखिरत का ताल्लुक कर सकते हैं कि आपने कितनी नमाज़ें पढ़ ली, कितने रोज़े रख लिए, कितनी ज़कात कर दी, कितने हज कर दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि पूरी की पूरी हमारी ये ज़िंदगी इसके अंदर जो इसकी हकीकत छुपी हुई है वही आखिरत की शक्ल में निकल के हमारे सामने आ रही है। ये एक बहुत अहम पॉइंट है, और ये बज़ाहिर मतलब जो हमारा कंसेप्ट ऑफ आखिरत है उससे मिसमैच होगा। दूसरा जो एक बहुत अहम नुकता हम बयान कर रहे थे कि इंसान का जो नफ्स है, जो इंसान की हकीकत है, इस हकीकत को खुदा ने जिंदगी गुजारने के लिए दो चीजें कराई थी, दो अहम कनेक्शन किए हैं। जैसे आप टूल कह लीजिए, इक्विपमेंट कह लीजिए, उनमें से एक चीज है जिस्म, दूसरी चीज क्या है रूह, जिस पर हमने पिछले दो दफा से बात की। रूह यहाँ पर मैं उस सेंस में नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जैसे आमतौर से इस लफ्ज़ को यूज किया जाता है, ये जैसे रिवायतों में भी इस्तेमाल किया गया है रूह का, जिसमें रूह को इंसान की जान भी कहा गया है, या बाज़ औक़ात नफ्स और रूह को इंटरचेंजेबल तौर पर इस्तेमाल किया गया। मैं स्पेशली कुरानिक लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुरान की जबान में नफ्स बिल्कुल एक अलहदा चीज है जो इंसान की हकीकत है, जिसमें इंसान के तमाम तजुर्बात जमा होते हैं, जिससे हिसाब लिया जाएगा, जिसको महशर में खड़ा होगा। यानी हर नफ्स ये नफ्सी है कि जो मैदान महशर में खड़ा होगा, ये नफ्सी है जो अपने अमाल का मुशाहदा करेगा, ये नफ्सी है कि जिस पर अजाब होगा या जिस पर तबाह होगा। तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि जो हकीकत इंसान है वो उसका नफ्स है, ठीक। सवाब और अजाब का ताल्लुक न जिस्म से है दर हकीकत, ना रूह से, बल्कि नफ्स। इसीलिए एक इंसान है कि जिसका इंसान के तौर पर जिस्म जल कर राख हो गया, अजाब बरज़खी है, अजाब बरज़खी भी है और बरज़ख़ की सवाब और लज़्ज़त जन्नत भी, तो जिस्म सबका खत्म हो गया, लेकिन नफ्स बाकी है जो किसी भी जलने से या कत्ल होने से या किसी चीज से खत्म नहीं होता। वो उस लज़्ज़त और उस तकलीफ को महसूस करेगा जो उसने अपने आमाल और किरदार के जरिए से कर रखी है, क्योंकि ये इंतहाई अहम दूसरा नुस्खा। और जो इंसान का नफ्स है, नफ्स की हालत को हम जब चाहें समझ सकते हैं, और उससे हमें ये पता चल सकता है कि हम इस वक्त जन्नत में हैं या नऊज़ुबिल्लाह जहन्नम में। क्योंकि कुरान करीम की आयतों का आप लोग अरबी पढ़ रहे हैं, इसका आप गौर कीजिएगा कि कुरान करीम की मैक्सिमम आयतें ये नहीं कहती हैं कि लोग जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे। इन्नल मुत्तकीना फी जन्नतिन नईम, इसका मतलब क्या है? इन्नल अब्रारा, मुत्तकीन जो है वो जन्नत में है। ये उसी तरीके से काफिर जो है, ये फाजरीन जो है, वो जहन्नम में है, जाएंगे का लफ्ज है, शायद एक दो जगह कहीं, लेकिन उमूमी तौर पर नहीं। इससे ये बात पता चलती है कि इस वक्त भी हर नफ्स या जन्नत में है या जहन्नम में, इस दुनिया में। लेकिन क्योंकि ये जिस्म का पर्दा बीच में पड़ा हुआ है, इसलिए वो अपनी जन्नत और जहन्नम को सही मानों में देख नहीं पा। लेकिन पढ़ता बिल्कुल पढ़ता, मैंने आप देख लीजिए कि जो इंसान है कि जिसमें मैंने आप लोगों को एक मिसाल दी थी कि वो इंसान जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और वो लोग जो खुदा के मुनकर हैं, काफिर हैं, उनकी जिंदगी को खास तौर से आप देखें 60 ईयर्स के बाद इस दुनिया में देखें। क्यों? उसकी वजह क्या है कि 40 साल के एज तक इंसान को खुदा ने अख्तियार दिया है कि वो अपने ऊपर मुकम्मल कंट्रोल कर सकता है, मतलब अपने आप को वो शो कर सकता है जो वो है, जो उसकी पावर है, उन्हें ये पावर खुदा की तरफ से दी है, ये अख्तियार है। लेकिन 40 साल के बाद ये अख्तियार कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है, और 60 साल के फिल्म तक पहुंचने के बाद ये अख्तियार तकरीबन खत्म है। उसके बाद जो लोग नजर आते हैं वो वही हैं जो अंदर थे, यानी कि जो उनके नफ्स की हालत है वही निकल के जाहिर होगी। इसमें आप कंपेयर करके देखें कि वो अफराद मिसाल के तौर पर स्टालिन या ऐसे किस्म के लोग जिन्होंने हजारों लाखों इंसानों को कत्ल किया, जो डिक्टेटर जालिम, और उसके बरक्स आप नेक इंसानों को देखेंगे जिनकी मिसाल जैसे मैंने आप लोगों से कई दफ़े कहा कि अल्लाह बहजत से आप देखें या इस किस्म के और दूसरे उलमा को आप देखेंगे जो 90 साल के 90 बरस के थे, मतलब उनकी क्या कैफियत है। तो ये बजाते खुद इस दुनिया में नजर आने शुरू हो जाते हैं। नहीं, आप इस चीज को नहीं समझ रहे, मैं ये बात कह रहा हूँ। नहीं, इस मैं सब चीज क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक इंसान की जो क्वालिटी है जो उससे जाहिर होती है उसके जरिए से समझ में आ जाता है कि ये सब हकीकतन क्या है, इसके अंदर क्या है। यानी मिसाल के तौर पर कि आप एक तरफ मदर टेरेसा को देखें और एक तरफ जो है वो हॉलीवुड की जैसी एक्ट्रेस को देखें, सामने रखें दोनों कैरेक्टर, आपको कुछ बहुत वाजे फर्क नजर आएंगे। जैसे एक मिसाल मैंने दी थी, एक मिसाल मैंने कह दी थी कि जितने भी इस किस्म के लोग हैं वो सब तन्हाई से फरार करते हैं। मैंने जितने भी ऐसे अफराद के जिनके नफूस में खराबी है वो तन्हाई से फरार करते हैं, वो अकेले नहीं रहना चाहते, जिसके लिए उनके पास बहाना ये है कि वी सीक एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट और ये और वो फलां फलां है। क्यों, उसकी वजह क्या है कि वो जब भी अकेले होते हैं तो उनके नफ्स के अंदर भड़कने वाली आग उनको अजियत देती है, जो आग भड़क रही थी उनको। लेकिन उसके बरखिलाफ जितने मुमीन हैं, अच्छे इंसान हैं, वो ज़्यादातर अवामुन्नास के अंदर बैठ के अजियत नहीं करते। तो ऐसी अलामतें हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे देखेंगे तो हर शख्स की पेशानी पर लिखा हुआ जाएगा मिसाल के तौर पर, या कोई बुरा है तो उसका चेहरे का रंग स्याह पड़ जाएगा या वो है तो उसके, लेकिन ये अलामतें मैं कह रहा हूँ कि आफ्टर 60-70 ईयर्स ऑफ लाइफ दिस इज प्रोनाउंसेड। यानी आप मिसाल के तौर पर देखेंगे ऐसे अफराद की जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स में गुजारी है, उनके बुढ़ापे में आप देखें ना तो आपको ऐसा लगेगा कि वैसे आप किसी हैवान को देख रहे हैं, होंठ लटके हुए, ये इस किस्म की मतलब अजीब सी चीज़ है कि वो जो एक नूरानी कैफियत होती है वो नहीं आपको कहीं से भी नजर आएगी। उसके बरस आप एक इस इंसान को देखें कि जिसने अपनी जिंदगी में उसको इबादात में अच्छाइयों में अपने बुजुर्गों को देखें, अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, आपको ये फर्क है। तो ये कहने का मतलब है कि इंसान जैसे जैसे अपनी जिंदगी दुनियावी जिंदगी के अख्ताम तक पहुँचता है तो ये नफ्स की जो हालत है ये नजर भी आना शुरू हो जाती है। यानी इसमें हमने खास तौर से उन साइंटिस्ट के अहवाल पे गौर किया कि जो कहते हैं खुदा नहीं है, बड़े बड़े साइंटिस्ट, लेकिन अब दूसरे जो एंड तक पहुँचते पहुँचते उनकी हालत बुरी हो जाती है, अजीब अजीयत है, तकलीफ है, मतलब उसमें भी झलक रहा होता है कि ये सब मुतमिन नहीं है, सुकून नहीं है, इसके अंदर कोई आग जल रही है। तो बहरा ये मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि तो ये दूसरा अहम तरीन नुकता कि अगर हम चाहें, अगर हम मुतवज्जे हैं या अगर हम खुद अपने नफ्स की हालत से बाखबर हों तो हम इस बात से पता चला कि हम किधर स्टैंड करते हैं, किस डोमेन में पाए जाते हैं, जन्नत के डोमेन में या जहन्नम के डोमेन में। اور اس کی بڑی بڑی نشانیوں کی روایتوں میں بیان کی گئی، بڑی بڑی نشانیاں جنتی اور جہنمی کے طور پہ ان کے نصیب کی حالت میں ڈفرینس تھی. پہلی نشانی کیا ہے کہ انسان کا دل دار فنا سے اوقات ہو جائے اور دار بقا کی طرف متوجہ ہو جائے، یعنی جو فنا ہو جانے والی چیزیں ہیں اس میں دل نہ لگے اور جو باقی رہنے والی حیات ہے اور زندگی ہے اور اشیاء ہیں اس کی طرف. دوسری نشانی کیا ہے؟ ذکر خدا میں لذت کی محسوس کرے، یعنی جب بھی نماز پڑھے، جب بھی ذکر کرے اس کو باقاعدہ لطف شروع رکھے. اور عرفا کا بیان یہ ہے کہ یہ جب انسان پر یہ کیفیت زیادہ بڑھتی ہے تو یہ لطف و سرور جسم تک بھی آ جاتا ہے، صرف روح تک، نفس تک نہیں رہتا. تیسری کیفیت کیا ہے؟ انسان اولیاء خدا سے خود بخود محبت کو اپنے دل کے اندر محسوس کرے، اولیاء خدا سے. جیسے پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ خدا نے حسین کے لیے مومنین کے دلوں میں خاص محبت کو پیدا کی، یعنی کہ نبیوں سے، آئمہ طاہرین علیہم السلام کہ اولیاء خدا ہیں، آپ کو خود بخود محسوس ہوگا کہ جب بھی ان کا ذکر ہوگا نا آپ کا دل کھٹے گا ان کی طرف، اور جب بھی دشمنان خدا کا ذکر ہو اس کی نفرت محسوس ہوگی. یہ علامتیں کہ ہم کس دونوں میں پائے جائیں جو روایتوں کے اندر بیان کی ہیں، کہ جو پیرامیٹر ہیں کہ جن پر ہم اپنے آپ کو رکھ کے پرکھ سکتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یعنی کہ جنت اور جہنم والی بات جو ہے یہ ایسی نہیں ہے کہ جیسے ہم کہیں کہ وہ مرنے کے بعد نظر آئے گی، نہیں. کیونکہ یہ لائف ایک ہے، یہ لائف ایک کنٹینیوٹی میں چل رہی ہے، یہ کوئی ڈس جوائنٹیڈ فیزز نہیں ہے دنیا اور آخرت، بلکہ آخرت دنیا کی زندگی کے باطن کا اور اس کی حقیقت کا نام ہے. تو اس نفس کی جو حقیقت ہے وہ ہمیں خود بتا دیتی ہے کہ ہم کیا کریں. یہ ایک اور بہت اہم حصہ. اچھا، اب اس سے آگے بڑھ کے، اب ظاہر ہے کہ جب ہم نے تھوڑا سا چیزوں کو نظریاتی طور پر سمجھنے کی کوشش کی تو نظریاتی بحث ہمیشہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ عمل پرفیکٹ ہو سکے. اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ نظریاتی بحث کسی شوق کو، علمی شوق کو فقط پورا کرنے کے لیے کی جاتی ہے. یعنی مثال کے طور پر کہ آپ جب اس بات پر وہ بحث کر رہے ہیں کہ جتنے بھی فزیکل سسٹمز ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، کیوں یہ بحث کی جاتی ہے، کیوں اس پر اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی جاتی ہیں اور ریسرچ کی جاتی ہے، تاکہ جب ہم ان فزیکل سسٹمز کو یوز کریں تو صحیح طریقے سے. اور اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ میڈیسن. تو میڈیسن میں جب آپ اتنی زیادہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، ایک بیماری ہے اس کی کاز کیا ہے، کون سی چیز ہے جو بیماری کو پیدا کرتی ہے، اس کی وجہ بنتی ہے، تو اس پر اتنی زیادہ ریسرچ کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ آپ بیماری کا صحیح علاج کر سکیں. اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کم از کم بھی 50-60-100 سال کی محنت کے بعد سمجھ میں آئی ہے لوگوں کو کہ کون سی بیماری کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے. ہماری بحث جو اب تک بظاہر نظریاتی ہے، آج میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے تھوڑے سے عملی پہلوؤں کی طرف ہم اشارہ کریں کہ موت، آخرت، قبر، قیامت، ان سب کو سمجھنے کی وجہ سے ہم نے کیا تبدیلی ہونا چاہیے، اس کا اثر ہمارے اوپر کیا پڑنا چاہیے، اس کا اثر ہمارے اوپر کیا برآمد ہے. ایک جملہ جو روایت معصوم سے حاصل کیا گیا ہے، بہت خوبصورت جملہ، کہ موت کی یاد انسان کے دل کو زندہ کرتی ہے. بہت خوبصورت جملہ. موت کی یاد، موت کو یاد رکھنا انسان کے قلب کی زندگی کی علامت، اور موت کو فراموش کر دینا انسان کے دل کو مردہ کر دینا. یہ سب سے اہم عملی نتیجہ ہے، یعنی کہ جس کو علماء نے بیان کیا کہ ذکر خدا کے بعد بہترین ذکر موت اور آخرت. ذکر کا مطلب یاد کرنا، یاد رکھنا، کہ یعنی جیسے حکم ہے نا کہ ہر صبح جمعہ قبرستان جاؤ، یا اکثر یعنی کہ پیغمبر اکرم زیارت قبور کے لیے اکثر تشریف کو جایا کرتے تھے، بعض اوقات راتوں کو جا کے جنت البقیع میں نمازیں پڑھا کرتے تھے. اس لیے یا جیسے اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں، ایک دو چھوٹے چھوٹے واقعات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گے، یہ بہت مشہور ہے ہمارے اسکول کی کتابوں میں بھی تھا، کہ جب جنازہ ہے کسی کو دفنایا جا رہا ہے تو پیغمبر اکرم جنازے کے کنارے اس طرح بیٹھ گئے ہیں اور اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ لوگوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی آندھی میں جوش آ گیا، ابال آ گیا، اس طریقے سے گریہ. اور پھر اس کے بعد حاضرین مجلس کو مخاطب کر کے فرمایا آپ نے کہ اے بھائیو، اس دن کے لیے سامان پڑھیں گے. حضور معراج میں تشریف لے گئے اور جبرائیل نے جب موت کے اور ان سب چیزوں کو بتایا تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، موت کا مرحلہ بہت سخت ہے. تو جبرائیل نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، موت کے بعد آنے والی چیزیں موت سے بھی زیادہ سخت ہیں، اس کے لیے تیاری کر کے رکھتے ہیں. یہ ایسے امور نہیں ہیں جو جس کی طرف سے انسان حاصل ہے. ایک دفعہ حضور نماز ظہرین کے لیے کھڑے ہیں، کوئی عربی بدو آیا، اس نے کہا مست آخرت کیا، قیامت کیا. حضور نے اس کا جواب نہیں دیا کیونکہ نماز والے وقت کو نہیں خراب کرنا چاہ رہے تھے، نماز پڑھی اور اس کے بعد کہا کہ وہ کون تھا کہ سوال کر رہا تھا کہ قیامت کیا. اس وقت کے سامنے لائے گیا، آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیسے. یہ بات کا سوال ہے کہ ایسے میں اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہو، نہیں سمجھنا چاہتے ہو، کیا ہیں کیا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے تمہاری تیاری کیا ہے، کیا لے کر جا رہے ہو، کیا فراہم کر رہے ہو، کیا بنا رہے ہو. یہ اب اصل ہے کہ جب ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو رہے ہیں یا اس کو تھوڑا تھوڑا ہمارے ساتھ درست حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ موت کیا ہے، قبر کیا ہے، برزخ کیا ہے، آخرت کیا ہے، کہ ایک حد تک چیزوں کو گرسپ کرنا، اس کی ریالٹیز کو سمجھنا، تو اب اصل کوشچن جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس کی تیاری کیا ہے. کہ جب ہمیں یہ بات ہماری نظروں کے سامنے واضح ہو گئی کہ یہ زندگی فقط اور فقط امتحان ہے، اِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، جو زندہ ہے، حیوان کا مطلب یہ نہیں کہ آخرت میں زندگی ہے، اِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کے بے شک آخرت کا گھر زندہ ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا گھر مردہ ہے، یہ صرف اور صرف فیبریکیٹڈ ہیں فور اے سرٹن ٹائم پیریڈ، اس میں کوئی حقیقت زندگی نہیں پائی جاتی. اس چیز کے لیے ہم نے کیا کیا، کیا سوچا، کیا ہم اپنی پوری کی پوری ایفرٹ مردہ پر لگا رہے ہیں اور زندہ کو فراموش کر رہے ہیں. تو سورہ الفجر کی وہ آیت جو میں نے سب سے پہلے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ جب ایک انسان وہاں پہنچے گا تو کیا کہے گا، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ اقدام کیا. انہیں قیامت میں پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ میں آئے گا کہ زندگی ہے اور اس سے پہلے جتنا کچھ میں کرتا رہا وہ سب کا سب زندگی نہیں، زندگی کی حقیقت نہیں. ٹھیک ہے، تو آج ہم قرآن کریم سے اور پھر جو کتاب میرے پاس ہے احد وادی عملی کی تفسیر موضوعی سے، اس سے کچھ روایتوں اور آیتوں کے ذریعے سے کہ موت کی حقیقت کو آئمہ نے کیسے بیان کیا ہے، موت اور قبر کی حقیقت کو، اور ایک بہت اہم سوال، مطلب ایک بہت اہم نقطہ کہ ہماری اس زندگی کے بنیاد پر موت مختلف ہے. ہر انسان کی موت ایک جیسی نہیں ہے, اور انسانوں کی موت ڈپینڈ کرتی ہے ان کی اس زندگی کی کیفیت پر یا نفسی حالت. یہ چیز ہمیں کیسے سمجھ میں آتی ہے قرآن کریم سے, یہ انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ایک بات تھی کہ جس آیت پر ہم نے کافی تفصیل سے گفتگو کی تھی, کل نفس ذائقۃ الموت, اس میں بھی یہاں کہ جو ہم اس سے بات کر رہے تھے اس میں اس سے میں وہ پڑھ کے سنا دوں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ وہ ٹوٹلی میں نے بات اپنی طرف سے نہیں کہی تھی موت کے حوالے سے. یہ تھی کل نفس ذائقۃ الموت میں یہ بیان کرتے ہیں کہ نفس جو ہے وہ بمعنی ذات ہے. نفس کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کی ذات, یعنی سیلف. اور جب آپ ذات کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ذات ہر چیز کی ماہیت کو بیان کرتی ہے. ماہیت یعنی یہ کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. ایک اس میں دو تین نکات یہ یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ شاید کی تشریح کے حوالے سے, جن میں سے ایک نقطہ ہے جس کو قبول کر رہے ہیں, اس کا تنقید نہیں کیا, باقی نکات کے تنقید کی. یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے مفسرین نے, جن میں فخر رازی بھی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے استفادہ یہ ہوتا ہے کہ کس آیت سے کل نفس ذائقۃ الموت کا لیا ہے, کہ جو کچھ بھی مرتا ہے, انہیں جو چیز جنہیں ہم موت کو کیا سمجھتے ہیں, ختم ہو جانا, ضائع ہو جانا, زائل ہو جانا, زندگی کا رخصت ہو جانا, تو جس چیز میں سے زندگی رخصت ہوتی ہے وہ کیا ہے, وہ بدن. تو اگر ہم موت کو اس سینس سے بھی سمجھیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ موت کا مطلب نفس کا مر جانا, بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ موت کا مطلب نفس کا بدن کے ساتھ تعلق کا ختم ہو جانا, جس کی وجہ سے بدن اب حرکت کے اور عمل کرنے کے قابل نہیں رہا. اس کے بعد مرگ جو ہے موت روح کو نہیں مار سکتی, یعنی یہاں پر روح بمانے نفس کے جو ہم نفس ہے, موت روح کو نہیں مارتی بلکہ روح موت کو ہضم کر لیتی ہے, ذائقہ چکھتی ہے اور اپنے اندر ہضم کر لیتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, جو میں نفس سے کہتے ہیں نا, نفس فاعل ہے کیونکہ ذائق کا لفظ ہے اور چکھنے والا, اور جس چیز کو چکھا جا رہا ہے وہ موت ہے. تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز جو چکھنے والا ہوتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا, بلکہ جسے چکھا جاتا ہے وہ چیز ہضم ہو جاتی ہے, وہ چیز اس میں جذب ہو جاتی ہے جو چکھنے والا ہے. تو روح مر گرا می چکھا, یعنی روح موت کو کا ذائقہ چکھتی ہے, وہ در خود ہضم نہیں کو نہ اور اپنے اندر اس کو ہضم کر لیتی, یعنی موت کو نفس ہضم کر لے گا, کنزیوم کر لے گا اپنے اندر. جو چیز ہضم کی جا رہی ہے وہ ختم ہوگی, نہ کہ ذائقہ چکھنے والا ختم. اسی بیان کو میں نے تفصیل صاحب کے سامنے کھول کر دیا کہ نفس ذائق ہے, یعنی موت کا ذائقہ چکھنے والا, اور اس ذائقے کے چکھنے کی وجہ سے مرگ والی کیفیت ختم ہو جائے گی اور نفس پانی سے باقی ہو جائے گی. تو مطلب مرگ یعنی موت, جیسے مردہ مردہ ہے, ٹھیک ہے. تو میں اس لیے حوالوں کے ساتھ تاکہ ہم مطمئن رہیں گے, کوئی چیز میں اپنی اختراع نہیں عرض کر رہا, یعنی اٹ از ناٹ اے فیبریکیشن آف مائی اون تھاٹ. تو یہ وہ نظریہ کہ جس کو انہوں نے تین نظریات نقل کیے اسی ایک آیت کے حوالے سے, تین مختلف نظریات, اور اس نظریے کو بظاہر قبول کیا ذائقۃ الموت کے حوالے. اچھا اب آئیے اس چیز کی طرف کہ جو ہم بات کر رہے تھے پہلی چیز, हर नफ्स जो कमाता है उसका गिरवी है। इस जुमले का समझते हैं, गिरवी का समझते हैं, रहन क्या मुझे अंग्रेजी एग्जैक्ट शायद, हाँ यही इसका तर्जुमा है। इसका मतलब क्या है आपके जहन में, क्या आप लोग बताएं ताकि मैं थोड़ा सा यानी आपके जहन में इस जुमले का मतलब क्या है रहन का। और ये आयत कौन सी है, सूरह मुद्दस्सर, सूरह मुद्दस्सर का नंबर है 74, आयत का नंबर है 38। कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीमतुन, इन्हें रहन का मतलब शायद ये होता है कि आपने एक चीज ली, गिरवी रखवा ली, अब आपको कुछ देना पड़ेगा तब वो चीज आपको वापस मिलेगी, है ना। यानी कि आपने एक चीज को रखवा दिया रहन, तो भाई इसको रखो मेरे बदले में, कि उसको एक प्रॉपर्टी के तौर पर, एक फ्लैट के तौर पर आपने रखा कि आप इस चीज को मेरे पास रखिए और मैं इसको मतलब कोई कीमत दूंगा तो उसको आजाद करा दूंगा। तो कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीमतुन, यानी हर नफ्स किस चीज के बदले में गिरवी है जो उसने कमाया। क्या मतलब समझ में आता है, हर नफ अपनी कमाई के बदले में गिरवी है, रहम। अच्छा सवाल, पॉइंट नंबर वन, किसने पकड़ा हुआ है नफ्स को, जहाँ से उसको छुड़ा के ले जाना है। और इसी से दूसरी बात मुझे समझ में आ रही है कि जो कीमत हम देंगे नफ्स को छुड़ाने के लिए वो हमारी कमाई है, दिमाग कैसा बात, जो हमारी कमाई है वो कीमत है जो हम देंगे, और उस कमाई को देकर और नफ्स जहाँ फंसा हुआ है, जहाँ पे रहन रखा हुआ है, उससे उसको बाहर निकालेंगे, आजाद कराएंगे। नहीं, अब इस भी एक जुमले को बहुत गौर से सुन लेगा, ये बहुत अहम कंसेप्ट है। हम और आप जो जिंदगी गुजार रहे हैं, ये जिंदगी ऐसी नहीं है कि इसमें हमारे सामने चॉइस है कि हम या जन्नत में जाएं या जहन्नम में जाएं। यानी ये जिंदगी ऐसी नहीं है कि हम किसी न्यूट्रल ग्राउंड पे खड़े हैं और दो रास्ते जा रहे हैं, एक रास्ता जहन्नम की तरफ जा रहा है, एक रास्ता जन्नत की तरफ जा रहा है। ये जिंदगी खुद जहन्नम है, और इसकी प्रॉब्लम यह है कि या इस जहन्नम में रह जाए या जहन्नम से आजाद हो जाए। समझ रहे हैं बस, ये बहुत ही अहम कंसेप्ट है। ये जिंदगी बजात खुद जहन्नम, और इसकी ताईद में आयत और रिवायत दोनों पढ़ जाते हैं। सूरह तीन, लकद खलकना लिंसान फी अहसन तक्वीम थुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, खुदा ने इंसान को बेहतरीन फॉर्मूले पर पैदा किया और उसके बाद कहाँ उसको डाल दिया, पलटा दिया, असफल जैसे कहते हैं, असफल नहीं ये वो है ऊपर लिखे गए, असफल सबसे ज्यादा तक, काफिली पत्तियों में सबसे ज्यादा पत्ती में डाली, और सबसे ज्यादा पत्ती से नीचे तो जानना नहीं होगा ना, जो असफल काफिलीन है, जो लोएस्ट ऑफ द लो है वो जहन्नम। तो हम हकीकतन जहन्नम में जिंदा है, और प्रॉब्लम ऑफ लाइफ क्या है, गेट आउट ऑफ दिस और ट्रैप जिंदा। ये नहीं कि न्यूट्रल ग्राउंड पे खड़े हुए हैं और उसके बाद सोच रहे हैं उस रास्ते पर चलेंगे तो जहन्नम में चले जाएंगे, इससे चलेंगे तो जन्नत में। अब इसमें दूसरी बात क्या है कि जब जहन में आएंगे जहन्नम क्या है, ये तमाम अलैहिस्सलाम से भी जब पूछा गया कि कुरान करीम की आयत है कि वह इनकुम इल्ला वारिदुहा, कि तुम में से कोई ऐसा नहीं है कि जो उस पर वारिद ना हो, हर एक को जहन्नम के ऊपर से होकर गुजरना, हर एक को वारिद होना। पूछा गया आप जहन्नम पर कब वारिद हुए, कहना आप कब पहुंचे या पहुंचेंगे, तो आपने फरमाया कि हम जहन्नम के ऊपर से उस वक्त गुजर गए कि जब जहन्नम ठंडा था। जो खूबसूरत किनाया किस चीज का, कि खुदा ने हम पर यह मेहरबानी की है कि हमें जहन्नम में उतारा है, लेकिन ये जो लाइफ स्पैन हमको दिया है आजमाइश का, इस अरसे में जहन्नम ठंडा था। इस दौरान में इस लाइफ में जहन्नम तक होकर गुजर गया, जैसे इमाम ने फरमाया कि हम जहन्नम पर थे उस वक्त गुजर गए कि जब जहन्नम ठंडा था। और इसी वजह से इस लाइफ को पुल सराहते हैं, वो जो पुल जहन्नम के ऊपर बना हुआ है, जहन्नम के ऊपर तना हुआ है, कि जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज और आग से ज्यादा गर्म, ये वो जिंदगी है जो इंसान पैदाइश से लेकर मौत तक गुजरता है, जो वो पुलों पर आता है। वो पुल सरात यही है, वो हो सकता है आगे उसके, जैसे मैंने कहा कि आखिरत दुनिया का बातें है, ठीक एक मिनट, आखिरत दुनिया का बातें है, यानी कि जो कुछ हमने जिंदगी यहाँ गुजारी है उसकी हकीकत को हम आखिरत में देखेंगे, ठीक है। यानी कि आपने और हमने इंशाल्लाह अगर इस जिंदगी को तवज्जो से गुजारा, देखिए अब आप इस पर गौर करें, बाल से ज्यादा बारी क्या मतलब है, किस चीज की तरफ इशारा है, कि बहुत खूबसूरत सिंबॉलिज्म है सारा, बाल से ज्यादा बारीक का क्या मतलब है, कि जो चीज बाल से ज्यादा बारीक हो उसको देखना और उसको शनाख्त करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस जिंदगी में इस बात की शनाख्त करना कि सही लाइफ क्या है, ये बाल से ज्यादा बारीक चीज को देखने के बराबर आसान काम नहीं, इसीलिए ज्यादातर इंसान भटक रहे हैं। बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार की धार से ज्यादा तेज है, यानी कि उस पर कायम रहना मुश्किल, तेज दिन हमसे नहीं गुजारा जाता है कि जो सुबह से लेकर रात तक फरमाबरदारी खुदा के मुताबिक गुजरे, एक नमाज ऐसी नहीं पढ़ी जाती कि जो कामिल तवज्जो के साथ अदा हो जाए, यह है तलवार की धार से ज्यादा। तो यानी जिस बात की तरफ हम इशारा कर रहे थे, जो प्रॉब्लम ऑफ लाइफ इज टू गेट आउट ऑफ द हेल इन विच वी आर, जो अपने इंतकाल तक इससे बाहर नहीं निकल सका, ही विल बी ट्रैप्ड इन फ्रंट, फिर जैसे ही वो इससे आगे निकलेगा फिर इसकी हरारत को देखना शुरू करेगा, फिर इसकी हकीकत उसके सामने। अभी खुदा की मेहरबानी है कि मौत के इंतकाल तक इसको ठंडा रखा है, गुजर जाओ इसके ऊपर से निकल जाओ। और जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि इससे भी ज्यादा बड़ी जो है मर्ग अख्तियारी की है, कि हम जिस वक्त में इंतकाल देंगे उससे पहले चाहो तो मौत के मरहले से गुजर जाओ, वो अवसर है इस हेलिश डोमेन से बाहर निकल जाओ। पहले भी आपसे कहा था कि उसमें बुनियादी फर्क है, बारह नंबर दी नहीं बहुत बड़े परफेक्शनिस्ट हैं, थोड़ा सा इसको एनालाइज तो करें जो चीज वो कह रहे हैं, और जरूरी नहीं है कि उनका बेसिक आइडिया गलत है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसलिए कि जितने भी मजाहब या गौर फिक्र करने वाले लोग हैं उनकी सोच इसी पॉइंट पर कन्वर्ट करती है। इन्हें हो सकता है कि जिन लोगों ने ये तालीमात दी हों वो इसको सही बता रहे हैं, बाद वालों ने आगे इसकी फसल बिगाड़ दी, जैसा कि हर मजहब के साथ है। तो कुरान करीम के कहने का मतलब ये है कि जिस जगह पर मुझे और आपको आजमाइश के लिए उतारा गया, ये जगह बजात खुद इसी का नाम जहन्नम है। यानी यही अजियत है, तकलीफ है। आप ये बना लीजिए कि हम सबको एक तकलीफ और बला के घर में उतार दिया गया है ताकि आजमाया जाए कि हम सब क्या हमारी रियल क्वालिटी ऑफ वर्क खुल के सामने। ठीक है, उस काम को अपनी जॉब को अकम्प्लिश करने के लिए हम सबको एक लाइफ दे दी गई विद ए पॉलिश टूल, जो लाइफ है फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, जो हम सब जानते हैं। इस वक्फे में जो हमारी आजमाइश है, खुदा ने हमारे साथ ये मेहरबानी की कि जहन्नम को ठंडा कर दिया। मतलब ठंडा से मुराद है कि हम यहाँ पर अगर झूठ बोल रहे हैं तो झूठ की असली शक्ल तो हमारे सामने नहीं आएगी। ठीक है ना, जिस तरीके से आते हैं कि जन्नत भी डायलूटेड है, कि हम अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज की भी असल लज्जत नहीं सामने आ रही जो आखिरत में मिले। तो इसी तरीके से खुदा ना खास्ता जो गलत काम कर रहे हैं उसकी भी वो असल शक्ल सामने आ रही है। ये मतलब है ठंडा जाना। ये फैसिलिटी इसलिए है कि ताकि हम अपने जॉब को अच्छे तरीके से अकम्प्लिश करें और यहाँ से निकले। कहाँ से निकले अब ये समझना है, कहाँ से निकले इस मटीरियलिस्टिक तहखाने से निकले। इन्हें वो तमाम सोचें जो मादियत की वजह से पैदा होती हैं, वो तमाम रुझान एफिलिएशन अट्रैक्शन रिपल्शन जो सब के सब इस मटीरियलिस्टिक डोमेन और कनेक्शन की वजह से पैदा हो रही है, इसका आधार है ये निकलना। ये निकलना ये नहीं कि जमीन से निकल के कहीं और चले, इससे निकलना करना ये जहन्नम है। जो मैं पहले भी काफ़ी तफसील से ये चीज़ें आपके सामने कर चुका हूँ कि इसका नाम जहन्नम है। ये खुदा ने हमें अख्तियार दिया है कि अपनी स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ डेथ से पहले भी हम अचीव कर सकते हैं। जैसा कि औलिया खुदा, अगर आपको याद हो, उन लोग खुदबों को नहीं भूलिएगा कि मैंने मैसेज बुलावा से पढ़ के सुना था, एक आया अल-हाकुमत तकासुर और एक उसके बाद आया रिजालुन ला तजीहन, जिसकी तस्वीर जिसमें आपने फरमाया कि बहुत सारे लोग वो हैं कि जो कब्र में पत्थरों की तरीके से पड़े रहते हैं, और कुछ लोग वो हैं कि जो इस जिंदगी में आखिरत के मराहल से पड़ गए। ठीक है, तो ये सब बातें कर चुके हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसको फॉर्मुलेट कर रहा हूँ इन कंसेप्ट कि हम ये समझ रहे हैं कि हमें जन्नत या जहन्नम में से किसी जगह जाना है। नहीं, हम जहन्नम में हैं, या इससे निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, प्रॉब्लम यह मैस्टर कयामत जिस दिन सबको जमा किया जाएगा, और उस दिन हर शख्स से खुदा पे जो हिसाब लेगा ही लेगा। लेकिन आले इमरान आयत नंबर 30 कि जब हर नफ्स अपने अमल को अपने सामने हाजिर पाए, यौमा तजदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहज़रन, कि वो दिन होगा कि जब हर नफ्स अपने सामने हाजिर पाएगा। ये मेरी नमाज पढ़ी जिन्हें खुद वो उसके वजूद कहता होगा, उसके सामने हाजिर हो। या इसी तरीके से आखिरी पारे में है कि वो कयामत के बयान किया गया यौमा तुजलत सराहिर, कि वो दिन होगा कि जब चीजें जो बिल्कुल छुपी नहीं होंगे सब की सब कुछ दिखाएंगे। ये मैंने जो हमारे कहने का मतलब है कि बुनियादी तौर से कि हमें इस चीज को समझना है, इस जिंदगी को इस तरीके से गुजारना है कि जैसे खुले सराब के पैसा, यानी हम किसी न्यूट्रल ग्राउंड पे नहीं खड़े, हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं कि जिसके नीचे जहन्नम है, और इस तरीके से इस रास्ते को तय करना है कि गलत कदम पड़ेगा तो उसी चलेंगे। ये असल बात है जो हम चाहते हैं। तो कुल्ल नफ्सिन, उस आयत को हम पूरा कर लें, कुल्ल नफ्सिन बेमा कसबत रहीमतुन। तो अब बताइए नफ्स कहाँ फंसा हुआ है? कसबत जो कमाया, अर्न किया, तो नफ्स कहाँ फंसा हुआ है? नफ्स जहन्नम में फंसा है। ये जो जहन्नम है उसने नफ्स को घेरा हुआ, यानी कि लाइफ जो जहन्नमी लाइफ है, एलिस लाइफ है, नफ्स को आजाद कैसे कराएंगे उससे? अपनी कमाई को देंगे, यानी कि वही समझाने वाला अंदाज सिंबल, कि हम अपनी कमाई देंगे, अपने नेक आमाल पेश करेंगे, हमारा नफ्स जहन्नम से आजाद होगी। यानी कि अगर हमारे पास वो कमाई नहीं हुई, वो कमाई नहीं हुई, तो अपने नफ्स को जहन्नम से आजाद कराने की कोई सभी नहीं। तो कुल्लो नफ्स, कुल्लो पे गौर कीजिएगा, खासकर तो कुल्लो हर नफ्स, दिमाग का कबक जो कमाता है, रही नसुम उस पर रही। लेकिन आगे एक प्रश्न है, इल्ला अस्हाबल यमीन, मगर जो अस्हाब यमीन, यानी वो लोग जो तकवा और इन तमाम मराहिल से गुजरते हुए हालत अमन में आते इस जिंदगी, यानी जो मुत्तकी हैं, वो क्या है? अस्हाब मैमना है, वो खुदा के दायरे अमन में है। यानी कि इसको ये कहा गया कि खुदा का एक हरम है, खुदा का एक किला है, जो किला अमनियत है। जो मोमिन और मुत्तकी है वो खुदा के किले में है, और उसको इन सब चीजों का खतरा नहीं है, उसको डर नहीं। ठीक है, यहाँ तक बात वाजी जी। मोटिवेशन जन्ना से देखिए, जहन्नम से निकलना बजा तो सबसे बड़ी मोटिवेशन है। अच्छी से मुराद पहले अच्छी को डिफाइन करना है, किस चीज का फोकस, किस चीज का फोकस। देखो इसमें आमतौर से जब हम खुशहाल की बात करते हैं तो हम मटेरियल सक्सेस, मटीरियल प्लेजर को खुशहाली कराते हैं। यानी मिसाल के तौर पर जो जब हमसे ये कहा जाता है, हमारा माइंड सेट ये है कि हम ये समझते हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने में अपने घर में थे तो वो खुशहाल थे, और जब वो करबला में आ जाए तो वो मुसीबत पैदा हो जाए। इस किस्म की डेफिनेशन की दुनिया पर आप बात ही करें, हमारी जब के दीन की फिक्र ये है, और जो बात रिवायतों से भी बात सामने आई कि जिस जैसे जैसे रोज आखिर आगे बढ़ता जा रहा है, और हर शहादत के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे का रंग निखरता जा रहा है, बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, कि जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के सर पे ज़र्बत लगती है तो आप कहते हैं खुद को भी रख दिन चाहता। ये वो चीज़ है जो हमारे समझ में नहीं आती। तो ये या जंग ओहद में कि जब आपकी शादी को एक साल हुआ है और एक दो साल हुए हैं, और जो पहले बेटे को एक साल हुआ है, एक साल का बेटा है, और उस वक्त जब मुसलमानों में से 70 शहीद हो जाते हैं तो इमाम अली अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के पास रोते हुए आते हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह आपने मुझसे शहादत का वादा किया था, इतने मुसलमान शहीद हो गए, मैं भी शहीद हूँ। ये कौन सा माइंड सेट है हमारी समझ के बाहर? तो मैं कह रहा हूँ उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि खुशहाली की तारीफ क्या है। इस दुनिया में खुदा ने सारी चीज़ें ऐसी रखी हैं जो खुद बहुत इंसान को मोटिवेट करती हैं। मसलन बीमारी, मसलन महरूमी, मसलन तकलीफ, मसलन दोस्तों की बेवफाई, औलाद के साथ छोड़ देना, करीबियों का नाराज और मुंह मोड़ लेना, ये सब के सब वो फिंकर है जो हर इंसान जो है जिसको आप जितना भी खुशहाल करेंगे, ये वो चीजियाँ हैं जो खुदा की तरफ से चुभती रहती हैं और जो बताती रहती हैं कि ये जहन्नम है। और इस जिंदगी को रिलाई नहीं करना, इसको भरोसा नहीं करना और इसको अपना मशगूलैन बनाने की कोशिश की जाए। एक मिनट में आप चिंतित करो, आप खुल के बात कीजिएगा, मैं कोई वो नहीं है। आप अपनी बात पूरा, अपना आर्गुमेंट पूरा कर ली। देखें अली भाई, मसला ये है कि जो आप कह रहे हैं ना, ज्यादातर इंसान इसी हालत में, और ऐसे ही इंसानों के बारे में इमाम अली अलैहिस्सलाम का वो बहुत मशहूर जुमला है कि अन्नास नियामुन, कि लोग सो रहे हैं। और उसी के हवाले से मैंने आज ये जुमला आपसे कहा है कि मौत की याद दिल को जिंदा करने का बेहतरीन के लिए बेहतरीन चीज। जो इंसान अपनी मौत को फरामोश कर देता है, यानी इवन आप ये भी फर्ज कर लेंगे, एक बार जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ा, लेकिन बीमारी में क्या होता है, बीमारी में ये होता है कि जो लजीज खाना है उसकी लज्जा खत्म हो जाती है। जिस चीज को आप शौक से खा रहे होते हैं उसका दिल नहीं चाह रहा होता, उसी गजा को अपनी जबान पर लगते हैं, लज्जत नहीं महसूस हो रही, दिल चाहता है निकाल दें नहीं कर रहा। ये सब क्या किसी इंसान को सोचने के लिए दिल नहीं रखती। लेकिन कुरान भी यही कहता है, मासूम भी यही कहते हैं कि खुदा ने अपनी निशानियों को इंसानों के सामने वाज़ह तौर से बयान कर दिया, लेकिन लोग उसको कबूल करने के लिए तैयार। वह उलाए तो हमल वाकिन, इसको हम आप क्या रहे हैं, सही मानों में अपनी फिक्र कर लें तो वो बहुत है। ऐसे लोग हैं क्या रहेंगे, कब तक रहेंगे। तो खुदा ने पैगम्बर को भी कह दिया, हमारी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है किस करके पैगम्बर के बगैर जिम्मेदार। खुदा ने उनको कह दिया कि पैगम्बर तुम अपनी जिंदगी दे दोगे उनके पीछे, उनको ऐसे ही रहना, तुम अपना काम करो, सही बात बताओ। नहीं नहीं नहीं, आप उसको एक और तरफ ले गए, मैंने ये बात बिल्कुल नहीं ली गई। मैंने कहा कि द नेचर ऑफ प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, नेचर ऑफ प्रॉब्लम ऑफ लाइफ इस आयत के कंटेक्स्ट में, कि कुल नफ्सुन बिमा कसबत रहीमतुन, कि नफ्स की थकावट आपको अपने आमाल की कीमत देकर नफ्स को तड़पाने से बाहर निकालना है। ठीक, उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात की कि जिंदगी का प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम किसी पॉइंट जीरो पे खड़े हैं और उसके बाद ये कि हम जो हैं वो इधर माइनस में चले जाएंगे प्लस में चले जाएंगे। प्रॉब्लम ऑफ लाइफ ये है कि हम ऑलरेडी असफल उस काफिली में हैं, या इससे निजात हासिल कर लेंगे या इससे खतरे होंगे। चॉइस तो है, लेकिन चॉइस की नौयत वो नहीं है आमतौर पर। वी आर लिविंग एट द लोएस्ट ऑफ द लो, ईदर गेट आउट ऑफ इट और ट्रैप इनटू इट, ये है चॉइस। ठीक है, यानी इस हवाले से अगर हम उस सिनेरियो को ग्रैस्प करने के काबिल हो जाएंगे तो हम पर प्रॉब्लम की इंटेंसिटी और ग्रेविटी ज्यादा वाजे हो जाएगी। जिन्हें कि जिसे हम कहें कि भाई एक जो है आप खड़े हैं सड़क पे, अब इधर जाएंगे तो वो गड़े और खतरनाक, ये अच्छा रखता है, ये निस्बतन आसान प्रॉब्लम है। امام سے کہیں کہ آپ ہی گڑھے میں، اب یا وہ کام کیجئے کہ گڑھے سے باہر آ جائیے یا پڑے رہیے ٹھیک ہے. اور ابھی ہم آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، مثال کے طور پر 4 گھنٹے کا ٹائم ہے، تو اتنے عرصے میں اگر آپ گڑھے سے باہر نکل گئے تو خیر، ورنہ یہیں پر کام رکھ کے بھی آنا شروع ہو جائیں گے 4 گھنٹے کے بعد. یہ ہے پرابلم. یعنی ہمیں اور آپ کو ٹائم مل رہا ہے برتھ ٹو ڈیتھ، اتنے عرصے میں نکل جاؤ تو نکل جاؤ، ورنہ پھر یہیں پر وہ سانپ بچھو اور وہ سب کچھ مزیدار ہونے شروع. تو انٹینسٹی بڑھ گئی نا بہت زیادہ، پھر تو بہت شدت سے متوجہ ہونا چاہیے. یعنی جسے کہیں کہ خدا نے پورے سینیریو کو ایسا بنایا ہے کہ ایک لہجہ غفلت کی گنجائش ہی رکھی ہے، لیکن یہ بھی انسان کا کمال ہے کہ سب کے باوجود ہو رہا ہے. کل نفس بما کسبت رہی ہے، کہ ہر نفس اسے اپنے اعمال جو کچھ وہ کماتا ہے، کماتا صرف عمل نہیں ہوتا، کمانا آپ کی تھاٹ، ایکشن، انٹینشن، ہر چیز سے مستم ہے آپ کی کمائی، سب کچھ آپ کی کمائی. جو اچھی بات آپ سوچتے ہیں، جو اچھی فکر آپ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کی کمائی ہے، صرف ظاہری عمل نہیں ہوتا. جو آپ کی کمائی ہے وہ دیجیے اور اپنے نفس سے چھڑائیے. مگر جو لوگ ایمان اور تقویٰ کے مرحلے سے گزر کے خدا کے حرم امن میں داخل ہو گئے، ان کے لیے خطرہ نہیں. اور اس میں ایک بہت اچھا جملہ بھی میں اگر آپ دیکھیں، آفات اللہ بہجت سے کسی نے سوال کیا تھا کہ ہم کیا کریں کہ مقام مخلصین تک پہنچ جائیں. مخلص وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں شیطان نے کہا کہ میں ان کو نہیں بچا سکوں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اغوا کروں گا سب کو اولاد آدم میں سے، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے وہ بندے ان میں سے جو مخلص ہیں. تو انہیں پوچھا ہمیں کیا کرنا چاہیے، کسی نے ان سے سوال کیا کہ مخلصین میں شامل ہو جائیں. انہوں نے جواب دیا کہ پہلے مخلص بندے بن جائے. ابھی عربی ہے، تھوڑا سا اس میں اس کو سمجھانا پڑے گا. جو انہوں نے کہا مخلص بن جاؤ تاکہ خدا تمہیں مخلص بنا لے. مخلص کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جیسے آپ یوں کہیے کہ ہم اپنی میکسیمم پاسبل سنسیئرٹی کے ساتھ خدا کے پاس جائیں، اور ہماری سنسیئرٹی کو دیکھتے ہوئے خدا ہم نے سے ہر برائی کو دیکھ سکتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی جتنی سنسیئرٹی ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں، ہم اس خلوص کے ساتھ خدا کے پاس جائیں. ظاہر ہے کہ وہ خلوص ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہماری ساری برائیوں کو دیکھ کر، جب مجھے طاقت ہی نہیں، میں جتنا بھی پرخلوص ہوں لیکن میں کامل نماز نہیں پڑھ سکتا. میں جتنا بھی پرخلوص ہوں، ریاکاری سے 100% پاک عمل نہیں کر سکتا. لیکن جتنا پرخلوص ہم ہیں، وہ پرخلوص کے ساتھ خدا کے پاس جائیے، تو جتنی کمی آپ میں رہ گئی ہے خدا ان سب سے آپ کے پاس. دس از دا وے، یعنی اس چیز پر ہم کو جانا ہے. یہ آخرت کے حوالے سے جو سب سے اہم نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اس زندگی کو جب ہم نے سمجھ لیا کہ زندگی پر آخرت کی دنیا ہے، اس زندگی میں جو نفس جو دل کیفیات کو جذب کرتا ہے ان کی حقیقت ہی جنت اور جہنم کو بناتی ہے، ہمارے لیے اب جو سب سے اہم مسئلہ اور مرحلہ درپیش ہے عملی طور پر، اخلاقی طور پر، کہ وہ یہ کہ ہم اس زندگی کو اس طریقے سے گزاریں کہ ہم ہمیشہ یہ محسوس کریں کہ ہمارے پیروں کے نیچے جہنم ہے اور ہمارے قدم کھلے صراط پر ہیں، کہ جو بال سے زیادہ باریک اور آگ سے زیادہ گرم اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور ذرا کی لگنے سے اس جہنم. یہ آخرت کے حوالے سے، کاج کے حوالے سے، قبر کی تیاری کے حوالے سے، یہ وہ اہم ترین نتیجہ اور تجزیہ ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں محسوس رہنا چاہیے. جی اب آپ لوگ بدلتے ہیں.